लाउडेटुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाई जयंती वर्ष 2025 हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमें अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित मसीह को पहचानने में मदद करे तथा हमें ख्रिस्ती आशा के तीर्थ यात्रियों में परिवर्तित कर दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पाप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 8 दिसंबर को निष्कलंकर भागमन महापर्व के अवसर पर पोप फ्रांसिस ने देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात एवं खुश पर्व।
Oggi nella solennità dell'Immacolata Concezione, il Vangelo ci racconta uno dei momenti più importanti, più belli nella nostra storia dell'umanità.
आज निष्कलंकर भागमन महापर्व पर सुसमाचार पाठ हमें मानवता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खूबसूरत क्षणों में से एक के बारे बतलाता है। कुंवारी मरियम को यीशु के जन्म का संदेश, जब मरियम ने महादूत गैब्रियल को हाँ कहा और ईश्वर के पुत्र यीशु का शरीर धारण हुआ। संत पापा ने कहा कि यह एक ऐसा दृश्य है जो सबसे बड़ा आश्चर्य एवं भावना जगाता है, क्योंकि ईश्वर सर्वोच्च सर्वशक्तिमान देवदूत के माध्यम से नाजरेत की एक युवती से बात करते हैं और अपने उद्धार की योजना में उनका सहयोग मांगते हैं। जिस प्रकार माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टीन चैपल में चित्रित आदम की सृष्टि के दृश्य में, जहां स्वर्गीय पिता की उंगली मनुष्य की उंगली को छूती है, वैसे ही यहां भी हमारे मुक्ति के आरंभ में मानवीय और ईश्वरीय मुलाकात होती है। वे एक अद्भुत कोमलता के साथ मिलते हैं उस पौत्र क्षण में जब कुंवारी मरियम हाँ कहती है। वे एक छोटे शहर की महिला हैं और उन्हें हमेशा के लिए इतिहास के केंद्र में बुलाया गया है। उन्हीं की प्रतिक्रिया पर मानव का भाग्य निर्भर है, जो फिर से मुस्कुरा सकता और आशा रख सकता है, क्योंकि उसका भाग्य अच्छे हाथों में सौंपा गया है। मरियम पौत्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण कर उद्धारकर्ता को जन्म देगी, इसलिए मरियम वैसे ही हैं जैसे महादूत गैब्रियल उनका अभिवादन करते हुए कहते हैं, कृपा पूर्ण, बेदाग, पूरी तरह से ईश्वर के वचन की सेवा में, हमेशा प्रभु के साथ, जिनके हाथों में वह खुद को पूरी तरह से सौंपती हैं। उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी इच्छा का विरोध करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो सत्य और उदारता का विरोध करता हो। यह उनकी धन्यता है जिसका गुणगान सभी पीढ़ियां करेंगी। संत पापा ने कहा, आइए हम भी आनंद मनाएं, क्योंकि निष्कलंक कुंवारी मरियम ने हमें यीशु को दिया है जो हमारे उद्धार करता है। और इस रहस्य पर चिंतन करते हुए हम खुद से पूछें, हमारे समय में जो युद्धों से हिल गया है और सत्ता पर कब्जा करने एवं शासन करने के प्रयास पर केंद्रित है, मैं अपनी आशा कहाँ रखूं? क्या ताकत में, पैसे में या प्रभावशाली दोस्तों में या ईश्वर की असीम दया में? और मीडिया एवं इंटरनेट पर प्रसारित होने वाले कई झूठे चमकदार मॉडलों के सामने मैं अपनी खुशी कहाँ ढूंढूं? मेरे दिल का खजाना कहाँ है? क्या यह इस तथ्य में है कि ईश्वर मुझसे मुक्त रूप से प्रेम करते हैं, कि उनका प्रेम हमेशा मुझसे पहले रहता है और जब मैं पश्चाताप करके उनके पास लौटता हूँ तो वे मुझे क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, ईश्वर के प्रेम में, उस पुत्रवत आशा में? या क्या मैं अपने अहंकार और अपनी इच्छा को हर कीमत पर लागू करने की कोशिश में खुद को धोखा देता हूँ? उन्होंने कहा, भाइयों एवं बहनों, जैसे जैसे जुबली के पौत्र द्वार का उद्घाटन नजदीक आ रहा है, आइए हम अपने मन और दिल के द्वार प्रभु के लिए खोलें। उनका जन्म निष्कलंक कुंवारी मरियम से हुआ था और हम येसु की माता की मध्यस्थता द्वारा याचना करें कि वे हमारे जीवन में निवास करें। जब हम 2025 की जयंती और आने वाले हफ्तों में पौत्र द्वार के खुलने के करीब पहुंच रहे हैं, पोप ने प्रार्थना की कि हम भी अपने दिल और दिमाग को प्रभु येसु ख्रिस्त के लिए खोलें, जो निष्कलंक मरियम से पैदा हुए, और हम उनकी मध्यस्थता की याचना करें। संत पापा ने सभी को इन दिनों के दौरान पाप स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि यह संस्कार वास्तव में हमें अपने दिलों को प्रभु के लिए खोलने में मदद करता है। पोप ने कहा कि एक अच्छा पाप स्वीकार करने का निर्णय लेने के लिए आज एक अच्छा दिन है। यदि आप आज नहीं जा सकते तो इस सप्ताह या अगले रविवार तक अपना दिल खोलें और प्रभु सब कुछ माफ कर देंगे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Dominus, Ave Maria.
Et concepite Spiritus Sancti.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने निकारागुआ के विश्वासियों के लिए प्रार्थना का आह्वान किया तथा सभी युद्धग्रस्त देशों में क्रिसमस से पहले युद्ध विराम की अपील की। उन्होंने कहा,
In questa solennità dell'Immacolata Concezione di Maria,
निष्कलंक गर्भागमन के इस महापर्व के अवसर पर मैं विशेष रूप से निकारागुआ वासियों के करीब हूँ। उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, मैं आपको करिसिया और निकारागुआ के लोगों के लिए प्रार्थना में शामिल होने हेतु आमंत्रित करता हूँ, जो निष्कलंक कुंवारी मरियम को माता एवं संरक्षिका के रूप में मानते हैं और उनके प्रति विश्वास और आशा की पुकार करते हैं। स्वर्गिक माता कठिनाइयों और अनिश्चितताओं में उन्हें सांत्वना दे, सभी के दिलों को खोले ताकि देश में शांति, भाईचारा और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सम्मानजनक एवं रचनात्मक बातचीत का रास्ता खोजा जा सके। साथ ही संत पापा ने युद्धग्रस्त देशों के लोगों की भी याद की। उन्होंने कहा, हम पीड़ित यूक्रेन में, मध्य पूर्व में फिलिस्तीन, इसराइल, लेबनान और अब सीरिया में, म्यांमार, सूडान और जहां कहीं भी लोग युद्ध एवं हिंसा से पीड़ित हैं, शांति के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। उन्होंने युद्ध विराम की अपील करते हुए कहा, मैं सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि हम क्रिसमस के उत्सव को सभी युद्ध मोर्चों पर युद्ध विराम के साथ मना सकें। तत्पश्चात संत पापा ने रोम एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उसके बाद संत पापा ने अमेरिका के उन कैदियों की भी याद की जिन्हें मौत की सजा मिली है। उन्होंने कहा, आज मैं आप सभी से अमेरिका में मृत्युदंड पाए कैदियों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करता हूँ। 13 या 15 ऐसे कैदी हैं जिन्हें मृत्युदंड मिली है। आइए हम प्रार्थना करें कि उनकी सजा कम की जाए या बदली जाए। आइए हम सभी अपने उन भाइयों एवं बहनों की याद करें एवं प्रभु से उन्हें मृत्यु से बचाने की कृपा मांगें। तत्पश्चात संत पापा ने याद किया कि इटली में इसी रविवार को कैथोलिक एक्शन दल में सदस्यता की भर्ती हुई। कैथोलिक एक्शन दल के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए संत पापा ने कहा, मैं सभी सदस्यों को प्रशिक्षण, सेवा एवं प्रेरितिक प्रतिबद्धता की अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने रोका दी पापा के विश्वासियों और उस मशाल को आशीष दी जिसके साथ वे निष्कलंक मरियम के सम्मान में अपने खूबसूरत शहर के किले पर महान सितारा जलाएंगे। साथ ही सियेना, फवरियानो और अस्कोली पिचेनो के श्रमिकों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया, जो एकजुटता के काम करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, जो सम्मान का अधिकार है। संत पापा ने कहा, आर्थिक या वित्तीय कारणों से उनकी नौकरियां ना छीनी जाए। और अंत में अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए एवं रोम के प्यासा स्पानिया में पुनः मिलने की इच्छा के साथ संत पापा ने सभी को निष्कलंक गर्भागमन की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti auguro una buona domenica e buona festa dell'Immacolata.
दूर गगन से घोर कतारा जैसे फैलाता उजियारा तेरे सुत को मरियम माता दे दे अपनी ममता दूर गगन से भोर कतारा जैसे फैलाता उजियारा तेरे सुत को मरियम दे अपनी
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने आज सुबह वाटिकन के प्रेरितिक भवन में मानोस यूनिदास विश्व भूख के खिलाफ अभियान की कैथोलिक समिति के स्थायी आयोग के सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका सहृदय स्वागत करते हुए अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि यह एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1959 में स्पेन की कैथोलिक एक्शन महिलाओं द्वारा FAO अपील की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी जिसने रोटी संस्कृति और ईश्वर की भूख को जो मानवता के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है विकासशील देशों के प्रचार और प्रगति में सहायता और योगदान करने के लिए 65 वर्षों से इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। संत पापा ने निष्कलंक माता मरियम की छवि का उल्लेख करते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की जो स्त्री प्रतिभा की संवेदनशीलता और शक्ति के साथ उन बुराइयों के उन्मूलन के लिए करते हैं जो कई देशों को प्रभावित करती है। और संत पापा फ्रांसिस ने आज सुबह वाटिकन के प्रेरितिक भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री पीटर पेलेग्रीनी का स्वागत किया। उनके बीच निजी बातचीत 25 मिनट तक चली। इसके बाद राज्य प्रमुख ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन और विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर से मुलाकात की। गोपनीय संवाद के अंत में उपहारों का पारस्परिक आदान प्रदान हुआ। संत पापा ने राष्ट्रपति श्री पीटर पेलेग्रीनी को सोशल लव शीर्षक एक कांस्य कृति दिया जिसमें एक बच्चे को दूसरे को उठाने में मदद करते हुए दर्शाया गया है। इसके साथ संत पापा ने अपने दस्तावेजों के खंड इस वर्ष की शांति के लिए संदेश स्टासियो ओर्बिस पर पुस्तक उपहार में दिया। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रीनी ने स्लोवाकिया के कलाकार युराज क्रालिक द्वारा निर्मित त्रिआयामी कृति उपहार में दिया। और संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 7 दिसंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर में कार्डिनलों की नियुक्ति धर्म विधि की अगुवाई करते हुए 21 नए कार्डिनलों को कार्डिनल मंडल में सम्मिलित किया। संत पापा ने इस समारोह के दौरान अपने प्रवचन में कहा कि हम येसु के यरूशलेम प्रवेश करने पर थोड़ा चिंतन करें। यद्यपि उनका यरूशलेम जाना अपनी महिमा हेतु नहीं है बल्कि यह ईश्वर की महिमा के लिए हुआ जो उनके लिए मृत्यु के गर्त में उतरने का एक कारण बनता है। पवित्र शहर में वे जीवन देने हेतु क्रूस पर मार डाले गए। संत पापा ने कहा येसु के मार्ग में चलने का अर्थ सबसे पहले उनकी ओर लौटना और उन्हें सारी चीजों का केंद्र बिंदु बनाना है। कभी कभी हमारे आध्यात्मिक और प्रेरितिक जीवन के कार्यों को हम आकस्मिक चीज पर ध्यान देते और आवश्यक चीज को भूल जाते हैं। बहुत बार अनावश्यक चीजें हमारे लिए जरूरी बातों का स्थान ले लेती हैं। हम हृदय में उतरे बिना उन कार्यों में गोते लगाने लगते हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं। इसके बदले में हमें चाहिए कि हम उन चीजों के केंद्र में आएं और पिछली बातों का परित्याग कर यीशु को अपने लिए धारण करें। कार्डिनल शब्द मूल रूप से हमें इस बात की याद दिलाती है क्योंकि यह दरवाजे को सुरक्षित करने, सहारा देने और मजबूती प्रदान करने हेतु लगाए गए कब्जे को संदर्भित करता है। संत पापा ने कहा कि प्रिय भाइयों, यीशु हमारे सच्चे सहायक हैं। हमारी सेवा गुरुत्व का केंद्र वही महत्वपूर्ण स्थल है जो हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है। प्रिय भाइयों, आइए हम एक साथ मिलकर यीशु के मार्ग में चलें, हम नम्रता में चलें, हम आश्चर्य में और खुशी के साथ एक साथ चलें। और कुमारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन पर्व दिवस पर संत पापा फ्रांसिस 21 नए कार्डिनलों के साथ पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान किया और विश्वासियों को भौतिक संपदा और विशेष अधिकार से परे देखने के लिए प्यार, एकजुटता और सार्थक संबंध के जीवन को अपनाने की चुनौती दी। संत पेत्रुस महागिरजा घर में पवित्र मिसा समारोह के दौरान अपने प्रवचन में संत पापा ने पूछा, अगर हमारा दिल ठंडा, खाली और बंद रहता है तो बैंक खाते में पैसे भरने, आरामदायक घर और अवास्तविक आभासी रिश्तों का क्या फायदा? अगर आधी दुनिया भूख से मर रही है या युद्ध से तबाह हो रही है और बाकी लोग उदासीनता से देख रहे हैं तो विशेषाधिकार प्राप्त देशों में महान वित्तीय विकास हासिल करने का क्या फायदा है? दुनिया को बदलने के लिए कुंवारी मरियम को आदर्श बताते हुए संत पापा ने कहा, मरियम का हृदय पाप से मुक्त और आत्मा के लिए खुला हुआ एक ऐसा हृदय है जो खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। मरियम की सुंदरता दूर या अप्राप्य नहीं है, यह सभी के लिए एक उपहार है जो हमसे भी ऐसी ही प्रतिक्रिया की मांग करता है। निष्कलंक माता मरिया अपनी फलदायिता में सुंदर है क्योंकि वह पहचानती है कि जीवन देने के लिए उसे खुद में मरना होगा, गरीबों और कमजोरों की देखभाल करने के लिए खुद को भूलना होगा। संत पापा ने कहा कि उनका उदाहरण हम सभी को उनकी मानवता का अनुकरण करने और ईश्वर की कृपा से हमारी दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करने का आह्वान करता है। और कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन पर्व के अवसर पर रविवार दोपहर को संत पापा फ्रांसिस ने संत मरिया मेजर महागिरजा घर का दौरा किया जहां उन्होंने माता मरियम सालुस पोपोली रोमानी के आइकन के समक्ष प्रार्थना की। इसके बाद वे रोम के पियासा दी स्पानिया में स्थित निष्कलंक गर्भागमन माता मरियम की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़े। रोम के धर्माध्यक्ष कार्डिनल बाल्डासारे रेइना, जिन्हें कल ही कार्डिनल बनाया गया, और रोम के मेयर रोबर्टो ने संत पापा का स्वागत किया। इसके बाद संत पापा ने निष्कलंक गर्भागमन माता मरियम की मूर्ति वाले 27 मीटर ऊंचे स्तंभ के सामने सफेद गुलाब का एक बड़ा गुलदस्ता चढ़ाया। भजन और माता मरियम की स्तुति विनती के बाद संत पापा ने एक प्रार्थना पढ़ी जिसमें उन्होंने हमारे प्यार और हमारी कृतज्ञता को व्यक्त किया। फिर उन्होंने 2025 की जयंती की तैयारियों को याद किया जो आने वाले हफ्तों में शुरू होगी। निर्माण कार्य और तीर्थ यात्रियों के लिए शहर को तैयार करने से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, लेकिन उन्हें एक संकेत भी दिया कि रोम जीवित है और नवीनीकरण और आतिथ्य के लिए खुला है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।